नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनबू ने आज अबुजा में रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया के ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन शेष, जोरदार प्रचार अभियान जारी। भारत ने उड़ीसा के तट से पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के समुद्री निगरानी प्रयासों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि। और बिहार में खेली जा रही है महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी में भारत का सामना आज जापान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अबुजा में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनबू से वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति टिनबू दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री का नाइजीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। नाइजीरिया प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित करेगा। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वह दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति होंगे। इससे पहले 1969 में महारानी एलिजाबेथ को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। किसी भी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला यह 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम नाइजीरिया से ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो रवाना होंगे। वहां की 2 दिन की यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा डिसिल्वा द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत G20 ट्रोइका का हिस्सा है और G20 शिखर वार्ता में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। इस शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों के बारे में भारत का दृष्टिकोण रखेंगे और G20 नेताओं के नई दिल्ली घोषणा पत्र के परिणामों पर हुई प्रगति के साथ साथ हाल के वर्षों में भारत द्वारा आयोजित ग्लोबल साउथ शिखर बैठकों के निष्कर्षों को सामने रखेंगे। G20 शिखर बैठक के दौरान श्री मोदी के कई नेताओं से भेंट किए जाने की संभावना है। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 नवंबर तक गयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन शेष है। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा की 288 सीटों के लिए 4,136 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 3,771 पुरुष उम्मीदवार और 363 महिला उम्मीदवार हैं। यह चुनाव महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा में महिला भागीदारी का समृद्ध इतिहास रहा है। 1957 में विधानसभा की स्थापना के बाद से 461 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र के लोग विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे। नागपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि महायुति सरकार की विकास पहलू ने नागरिकों के जीवन को छुआ है। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महायुति सरकार की विभिन्न किसान हितैषी पहलों का भी उल्लेख किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। बोकारो जिले के गोमिया में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन पर झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया। दुमका में चुनावी सभा में श्री सोरेन ने कहा कि भाजपा लोगों को मुख्य मुद्दों से भटका रही है। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा और चंपई सोरेन सहित कई भाजपा नेता भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इन झारखंड, स्टूडेंट यूनियन पार्टी और वामपंथी दलों के नेता भी झारखंड के विभिन्न इलाकों में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। दूसरी ओर अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को झारखंड में चुनाव अभियान पूरा होने के बाद मतदाताओं को संदेश भेजना बंद करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के प्रशासन को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कल ओडिशा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1,500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान परीक्षण को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को याद करने के लिए देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में जनजाति गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। देश भर में मनाया जाने वाला यह उत्सव भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत और जनजाति समुदायों के योगदान का सम्मान करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकार ने जनजाति समुदायों के विकास और उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने इस्तीफे में श्री गहलोत ने कहा कि पार्टी आज गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इस बीच मीडिया से बात करते हुए दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेता के इस्तीफे को साहसिक कदम बताया। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के समुद्री निगरानी प्रयासों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स, जापान के रक्षा मंत्री नाकातानी जेन और अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने आज ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में चौथी त्रिपक्षीय रक्षा बैठक की। रक्षा मंत्रियों ने बैठक के बाद जारी एक वक्तव्य में वर्ष 2025 से हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका द्वारा समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखाई। सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने के पहल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को $10 मिलियन की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियों को लौटाने की घोषणा की है। श्रीलंका ने सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशा साइन नायके की उपस्थिति में कल राष्ट्रपति सचिवालय में होगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति की 23 सदस्यीय मंत्रिमंडल नियुक्त करने की योजना है। भारत ने अजरबैजान के बाकू में COP29 में जलवायु, वित्त और न्यूनीकरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विकसित देशों की अनिच्छा पर असंतोष व्यक्त किया है। भारत ने कल शर्म अल शेख न्यूनीकरण महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन कार्यक्रम संबंधी कार्यसूची के बारे में सहाय निकायों की समापन बैठक में वक्तव्य दिया। विकसित देशों ने COP28 में ग्लोबल स्टॉक टेक से न्यूनीकरण पैराग्राफों की महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन कार्यक्रम में शामिल करने को कहा था, जो कि पहले हुई सहमति के विपरीत है। भारत ने सप्ताह के दौरान COP29 की प्रगति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एक वक्तव्य में भारत ने कहा कि विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण मामलों में कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है। टमाटर की कीमत बेहतर आपूर्ति के कारण एक महीने में 22% से ज्यादा कम हो गई है। टमाटर का अखिल भारतीय औसत मुद्रा खुदरा मूल्य 14 नवंबर को ₹52.35 प्रति किलोग्राम था, जो कि 14 अक्टूबर के ₹67.50 प्रति किलोग्राम के मूल्य से 22.4% कम है। इसी अवधि में आजादपुर मंडी में मॉडल कीमत ₹5,883 प्रति क्विंटल से गिरकर ₹2,969 प्रति क्विंटल हो गई है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय CSIR हेल्थ केयर थीम कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के एक सप्ताह एक थीम OWOT अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। अपने उद्घाटन भाषण के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि कैसे देश ने 2014 में केवल कुछ 100 स्टार्टअप से लेकर अब तक कई हजार स्टार्टअप तक का लंबा सफर तय किया है, जिसमें कई सफलता की कहानियां हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ कंपनियां मामूली शुरुआत के बाद अब सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रही है और अपने उत्पाद और सेवाएं न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बेच रही हैं। उन्होंने वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के 81वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुंचने का उल्लेख किया, जिसमें युवाओं की क्षमता को मान्यता दी गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिए हेल्थ केयर क्षेत्र में डीप टेक स्टार्टअप को समर्थन देने की अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में मोदी सरकार 3.0 ने Bio3 नीति लाई है और स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ रुपए और औद्योगिक केंद्रों के लिए 2,600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सतीश शर्मा ने भी संबोधित किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।